ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की 244 करोड़ रुपए से अधिक की राशि। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम के प्रवेश के लिए आज से होने वाली काउंसलिंग पर लगाई रोक। सुशासन और अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ किया एमओयू। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल हुए पहले चरण में 81% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सहित पंजाब और उत्तराखंड में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 562 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान जारी किया है। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि पंचायती राज संस्थानों और ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रदान किए जाने वाले ये अनुदान जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 244 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। ये राशि राज्य के 11,548 ग्राम पंचायतों, 146 ब्लॉक पंचायतों और 27 जिला पंचायतों के लिए है। प्रदेश में मेडिकल पीजी पाठ्यक्रम की प्रवेश प्रक्रिया में कथित अनियमितता को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने आज होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविन्द्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ में कल इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका दायर करते हुए सेवारत डॉक्टर ने आरोप लगाया था कि पिछले वर्ष हुई प्रवेश परीक्षा में अच्छी रैंक प्राप्त करने के बावजूद काउंसलिंग में कई अपात्र उम्मीदवारों को सेवारत श्रेणी का अनुचित लाभ दिया गया। नियमानुसार इस श्रेणी में पात्रता के लिए 31 जनवरी 2024 तक न्यूनतम 3 वर्षों की सेवा पूरी करना आवश्यक था, लेकिन अधिकारियों ने इस कट ऑफ तिथि के बाद भी सेवा अवधि की गणना कर दी, जिससे अयोग्य उम्मीदवारों को प्रवेश का अवसर मिल गया। कल हुई सुनवाई में महाधिवक्ता ने भी माना कि शिकायत प्रथम दृष्टया सही प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने पाया कि कट ऑफ तिथि के बाद एक निजी उम्मीदवार को सीट आवंटित की गई थी, इसलिए हाईकोर्ट से आज से होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगा दी है। इस मामले की अगली सुनवाई अब 25 फरवरी को होगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बसों में किराए की जानकारी नहीं देने और राउंड फिगर के नाम पर अतिरिक्त वसूली के मामले में कल सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने इस मामले में राज्य सरकार से जानकारी मांगी। इससे पहले न्यायालय ने प्रदेश के सभी बस स्टैंड पर किराया सूची चस्पा करने, बसों में डिस्प्ले बोर्ड लगाने और किराए पर पुनर्विचार करने को कहा था। इस पर राज्य सरकार की ओर से 15 अक्टूबर को हुई सुनवाई में महाधिवक्ता यशवंत सिंह ठाकुर ने न्यायालय को बताया कि सरकार की ओर से हलफनामा पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि किराए पर पुनर्विचार के लिए पत्र गलती से विधि विभाग को भेज दिया गया था। अब इस संबंध में कैबिनेट में निर्णय होगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में आज सुशासन और अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी और क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुगम बनाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से भ्रष्टाचार पर शिकंजा कसेगा और आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। रेलवे स्टेशनों पर हादसे और भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने देशभर के सभी स्टेशनों में अलर्ट जारी कर दिया है। दुर्ग से प्रयागराज महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ फिर बढ़ रही है। इसे देखते हुए रेलवे द्वारा दुर्ग और गोंदिया से 2 महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन 3 फेरों के लिए आज 18, 21 और 23 फरवरी को चलाई जा रही है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए दुर्ग रेल स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और जीआरपी के जवानों को तैनात किया गया है। दुर्ग आरपीएफ पोस्ट प्रभारी संजीव सिन्हा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि रेलवे यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर रेलवे स्टेशन पर एहतियाती कदम उठाए गए हैं।
जो भी ट्रेन कुंभ के लिए यहाँ से निकल रही है दुर्ग स्टेशन से, उसमें पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। इसके संबंध में हम लोग यहाँ पे बैरिकेडिंग करते हैं, लाइन लगवाते हैं पैसेंजर्स का, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। उनको लाउड एलर से हम लोग अनाउंसमेंट करते हैं, जनरल कोच किधर है, स्लीपर कोच किधर है, एसी किधर है, क्यूब मैनेजर लगा के उनको लाइन लगवाया जाता है और किसी प्रकार की भगदड़ या हड़बड़ी न करने के लिए उनको हिदायत दिया जाता है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल हुए पहले चरण के मतदान में 81% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण में राज्य के 53 विकास खंडों में मतदान हुआ। सभी जगहों में मतगणना शांतिपूर्ण संपन्न हुई और कहीं भी कोई अप्रिय घटना की शिकायत नहीं मिली है। आयोग के अधिकारियों ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण में 27,210 पंच, 3,605 सरपंच, 911 जनपद सदस्य और 149 जिला पंचायत सदस्यों के लिए निर्वाचन हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत 20 फरवरी को दूसरे चरण में 43 विकासखंडों में मतदान होगा। वहीं तीसरे और अंतिम चरण में 23 फरवरी को 50 विकासखंडों में वोट डाले जाएंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में दुर्ग और धमतरी जिले के नवनिर्वाचित महापौर सहित पार्षदों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महापौर और पार्षदों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वार्डों का समग्र विकास उनकी प्राथमिकता में होनी चाहिए। जन सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाए जिससे नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। श्री साय ने कहा कि सभी पार्षद अपने वार्ड के लोगों से लगातार संपर्क बनाए रखें और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग PSC द्वारा सिविल जज के 57 पदों पर भर्ती की जानी है। इसके लिए 23 फरवरी तक आवेदन किए जा सकते हैं। सिविल जज भर्ती के लिए अब ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं जो सिर्फ विधि स्नातक हैं। पहले लॉ ग्रेजुएट होने के साथ ही अधिवक्ता के रूप में भी नामांकित होना जरूरी था। अब इस शर्त को हटा दिया गया है। पीएससी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के परिपालन में यह शर्त हटाई गई है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित मल्टीलेवल पार्किंग में आज से रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। 20 फरवरी तक चलने वाला यह रोजगार मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से 500 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र के नियोजक टेक्नोटास्क BPO द्वारा न्यूनतम 12वीं उत्तीर्ण आवेदकों की भर्ती की जाएगी। रायगढ़ जिले के जूट मिल थाना क्षेत्र में एक ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार युवकों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने इस मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। जिला प्रशासन की समझाइश के बाद क्षेत्रवासियों ने चक्का जाम समाप्त किया। वहीं बलौदाबाजार जिले के कडार गांव स्थित भाटापारा निपनिया मार्ग में तेज रफ्तार हाईवे ने सड़क पार कर रही एक महिला को अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौत हो गई। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 फरवरी से प्रदेश के पूर्वी भाग के कुछ जिलों में हल्की वर्षा होने की संभावना है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि अगले दो दिनों में प्रदेश के न्यूनतम तापमान में हल्की वृद्धि हो सकती है।
एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पाकिस्तान और उससे लगे अफगानिस्तान के ऊपर 3.1 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके प्रभाव से हवा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है जिसके कारण न्यूनतम तापमान में अगले दो दिनों में हल्के वृद्धि होने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में मौसम शुष्क रहने की संभावना है।
और अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। कल 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उन्हें नमन करते हुए कहा कि शिवाजी महाराज केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि एक दूरदर्शी शासक, उत्कृष्ट रणनीतिकार और कुशल प्रशासक भी थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 22 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से मंत्रालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने आज दुर्ग जिले में ECT बस टर्मिनल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। रायपुर के पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा द्वारा पार्टी संगठन द्वारा लिए गए निर्णयों के खिलाफ कथित रूप से मीडिया को दिए गए बयानों को कांग्रेस पार्टी ने अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला पंचायत के CEO ने मुंगेली विकासखंड के 2 पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में कक्षा 6वीं में प्रवेश के लिए चयन परीक्षा 2 मार्च को जिले के 8 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने दुर्ग गोंदिया भंडारा रोड रेलखंड का आज निरीक्षण किया और परिचालन संबंधी कारणों से 19 और 21 फरवरी को दुर्ग छपरा दुर्ग सारनाथ एक्सप्रेस रद्द रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जारी की 244 करोड़ रूपये से अधिक की राशि। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने प्रदेश में मेडिकल PG पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आज से होने वाली काउंसलिंग पर लगाई रोक। सुशासन और अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ किया MOU। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत कल हुए पहले चरण में 81% से अधिक मतदाताओं ने किया अपने मताधिकार का प्रयोग। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।